आप सब लोगों को मेरे नमस्ते। आज हम युग की कहानियों में एक और मज़ेदार कहानी सुनते हैं। और आज की कहानी है कि जो हिस्सा था ज्ञानी चोर का, जब आदिल शाह का मूछ को चुरा लिया था, फिर क्या हुआ? अब पापा आप सुनाओ।
थैंक यू युग। तो आज हम ज्ञानी चोर के किस्से को आगे पढ़ाते हैं। और क्या हुआ था, जब आदिल शाह की दाढ़ी मूछ काट के ले गया था और नार चंपावत को छुड़ा के ले गया था, तो आदिल शाह तो ठगासा महसूस करता रह गया। अब आदिल शाह जो था वो बीजापुर में था, कर्नाटक की तरफ, और ज्ञानी चोर जो था ये था हरियाणा में महम रोहतक के पास का, वहाँ पर थी चोरगढ़ी। तो वहाँ से इतनी दूर जाके उसने फील्डिंग लगाई थी आदिल शाह की और छुड़ा के ले आया था नार चंपावत को। अब आदिल शाह अपने टाइम का सुल्तान था। अब सुल्तान की तो दाढ़ी मूछ उतर की तो बेइज्जती होगी बहुत बड़ी, उसने बदला तो लेना ही था। और इस बात से सतर्क ज्ञानी चोर भी था, वो तो वैसे ही विद्वान था, ज्ञानी था ही, तो भाई वो भी सतर्क था। अब आदिल शाह ने वापस जाके स्ट्रेटजी बनाई, प्लान बनाया। उसका जो एक सबसे खूंखार सेनापति था पगला पठान, उसको उसने बुलाया। उसको क्यों बोलते थे पगला खान था वो, जैसे बहलोल खान था ना राणा प्रताप के टाइम पे, ऐसा ही कम से कम 7 फुट की हाइट और दानव एकदम। उसका दूर दूर तक नाम था कि इतना क्रूर कट्टर है कि आदमी के सर को खरबूजे की तरह हाथ से दबा के फोड़ देता था, पकड़ के हड्डियां तोड़ देता था, औरत बच्चे उनको पैसे पैर से उठा के और सर पटक के दीवार पे मार देता था। इतना क्रूर और इतना दुर्दंत सेनापति था उसका कि ये देखो खड़े खड़े रोज का एक सूअर खा जाता था मार के, होल पिग
एवरीडे।
इतना दानव था, इतना बड़ा और क्रूर। तो उसको पकड़ा, उसका नाम था पगला खान। पगला खान इसीलिए बोलते थे कि उसका कोई भरोसा नहीं था कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसको वहीं पे मार दे, ना औरत देखता, ना बच्चा देखता, ना बूढ़ा देखता, और बस उठा कर मार देता। उसको वैसे ही बेड़ियों में जकड़ के रखना पड़ता था बहुत बार, तो कि ये किसी को नुकसान ना पहुँचा दे। आदिल शाह का वो भी राजा था, तो उसका वो वफादार भी था। आदिल शाह उसको प्रमोट भी करके रखता था। अब आदिल शाह ने पगले खान को बुलाया और उसके साथ 100 पठान लगाए। और क्या होता था, पठानों की अफगानों की बहुत सही नहीं बनती थी। जैसे राणा प्रताप के साथ भी उनकी 20,000 की अपनी सेना थी, 5,000 भील थे और 500 अफगान थे जो उनके साथ हल्दीघाटी की लड़ाई में लड़े थे। तो ऐसे ही कुछ अच्छे लोग भी होते थे वो जो सच्चाई का, अच्छी चीज़ों का साथ देते थे, और यहाँ पे ये कुछ ये पगला खान जैसे होते थे। तो आदिल शाह ने फरमान सुना दिया कि पगला खान और 100 पठान ले के चले ज्ञानी चोर, तेरी मौत का फरमान। और दूर दूर तक तख्ती फैला दी कि ज्ञानी चोर का सर काट के लेके आएगा पगला खान। एक तो दहशत थी उसकी, ऊपर से उसके साथ 100 जो दुर्दंत सिपाही थे वो भेज दिए कि जाओ और ज्ञानी चोर को पकड़ के ले, उसका सर चाहिए मुझे, कोशिश करो कि जिंदा ही आए, नहीं आए तो भाले पे टांग के ले आना, जो रास्ते में आए उसको उड़ाते चलो, उनका गांव है गांव जला दो, और जो उसकी सहायता करे उसको मार दो, किसी का कोई उसको पानी तक ना पिलाए। जहाँ तक था उसने दूर दूर ये बात फैलवा दी, पता ज्ञानी चोर को भी था। ज्ञानी चोर ने पहले देख लिया था कि भी इतनी दूर सुल्तान जैसे अपने राज्य से दूर आएगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ आएगा, तो उसका प्रभाव ऑलरेडी धीरे 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 कम होगा। यहाँ पर उसकी कोई सुनता नहीं था, इधर से जाट थे, मराठे थे, ये आदिल खान को कुछ मानते नहीं थे कि यहाँ पर ना उसका कोई प्रभुत्व था ना कोई सेना थी। तो इसीलिए आदिल खान ने भी बड़ी सेना भेजने के बजाय पगला खान के साथ 100 पठान एक गुरिल्ला युद्ध की नीति बना के भेज दी। पगला खान ने भी क्या किया, वो नदी के रास्ते से गया। पता था कि अगर ज़मीन के रास्ते से जाएगा तो काफ़ी उसको ख़तरा हो सकता है, काफ़ी लोग उसके खिलाफ हो सकते हैं और वो इजीली पहचाना भी जाएगा। तो जहाँ तक था मैक्सिमम रास्ता उसने नदी से कवर किया, नदी से कवर करके और फिर वो वैसे ही भेष बदलता बचता इधर उधर से वो गुरिल्ला युद्ध की नीति से गया और चुपके से उसने सोचा कि मैं चुपके से जाके चोरगढ़ी में उसको दबा लूँगा, ज्ञानी चोर को। तो उसने उसकी आगे गुप्तचर भेज के पता करना शुरू कर दिया कि भी ज्ञानी चोर कहाँ रहता है, चोरगढ़ी का पता करो, क्यों उसे चोरगढ़ी कहते हैं। और वो भी क्या थे, बड़े शातिर लोग थे। उन्होंने क्या कर रखा था, जितना भी धन और दौलत खजाना होता था ना, वो ला के उन्होंने ऐसे अंडरग्राउंड सिस्टम बना रखे थे कि जहाँ से कोई भी उनको निकाल नहीं पाता था। क्यों, अगर आपने घर में तिजोरी में रखा तो कोई भी बाहर से आएगा अटैक करके ले जाएगा, है ना। तो उन्होंने क्या कर रखा था, पहले जैसे बिटोड़े होते थे और कूप, कूप क्या होते थे कि जब गेहूं कट जाते उसके बाद जो तूड़ा होता भूसा है ना, वो लेके जानवरों के खाने के लिए रखते, तो उसको क्या करते, एक बड़ा सा वो बना लेते थे एक स्टोरेज, ठीक। और उसको उनकी जो सूखी होती थी पुराल, पुराल यानी कि जो सूखे गेहूं के वो बच जाते थे ना, हे के साथ कवर कर देते थे। और वो बहुत बड़े बड़े होते थे, उसमें जैसे किसी में 500 किलो आ गया, 500 किलो, किसी में 300 किलो, है ना, इतने भर भर के डालते थे मनों में, किसी में 40 मन का कूप है, तो इतने इतने ज़्यादा चीज़ें भर देते थे। वो क्या करते थे, उन्होंने सब के बीच में सेंटर में एक ऐसे होलो परमानेंट स्ट्रक्चर बना रखा था जिसको कवर रखते थे, जिसमें गेट या दरवाज़ा होते थे और ऊपर से वो होलो होता था एक पाइप की तरह। तो क्या करते हैं, जब भी वो भरने लगते उसको ऊपर से कवर कर देते, और इसमें इतना रास्ता होता था कि आदमी ऊपर से उसमें पूरा घुस जाया करता और वैसे किसी को पता नहीं लगता। और नीचे उन्होंने अंडरग्राउंड उसको खोद रखा था, सुरंगें बना रखी थी, और हर घर के साथ में एक कूप, एक बटोड़ा होता था जिसमें गोसे उपले रखते थे, और उसके बीच में उन्होंने ऐसे सेंट्रल स्टोरेज बना रखी थी। वहाँ से उन्होंने सुरंगें बना के एक ऐसा नेटवर्क बना रखा था सुरंगों का ज़बरदस्त, कि कहीं के कहीं निकल जाया करते, और कोई भी सिपाही या कोई भी आता बाहर से वो क्या करते, उसको खोदते रहते, मारते, देखते, उसमें से तो भी बिटोड़े में से गोसे, ठीक है, गाय का गोबर उपले ये निकलेंगे, और कुएं जो कूप थे कूप में से तूड़ा निकलेगा। किसी को शक ही नहीं होता था कि भाई इसके अंदर भी कुछ हो सकता है, वो खोदते रहते उसमें तो सारा डस्ट ही निकलता। तो ये उनके कारीगरी थे। फिर बड़े दिमाग वाले लोग थे, वो टनल उन्होंने ले जाके दूर थोड़ा सा गांव से बाहर जाके क्या करे कि एक बनी थी, बनी है ना जैसे जंगल होता है ना, वन तो होता है जो बहुत बड़ा गहरा जंगल हो, और जो गांव के पास होता है छोटा जंगल होता है उसको बोलते हैं बनी, वन बनी। तो बनी में खरगोश रहते थे। अब खरगोश क्या करते हैं, बुरो खोदते हैं, है ना, बिल खोदते हैं। वो क्या करते हैं, जो जहाँ उन्होंने खरगोशों ने बिल खोद रखे थे वो खुद नहीं खोदते थे सुरंगे, खरगोशों से खुदवा लेते थे। कैसे, कि उसमें एक ऐसे होल करके उनका फेवरेट फूड रख देते, कैरेट या खाने जो भी चीज़ें होती, तो उसकी स्मेल ला के खाने के लिए खरगोश क्या करते, खोद देते। खाने तक पहुँचे फिर उन्हें थोड़ी सी आगे और कर दिया, फिर थोड़ा सा और, तो ऐसे पूरा अंदर से जमीन को खोखला करवा लेते थे प्लानिंग करके। देखा, दिमाग से, अपनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और उन्होंने बड़े सेफली ऐसे बड़े गहरे गहरे वो भी खुदवा लिए। तो ऐसे सुरंगों का एक नेटवर्क उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बना रखा था, और सुरंगों के नेटवर्क के साथ में फिर वो एक बावड़ी थी, आज भी है वो, सच में वो एक बावड़ी है, और बावड़ी में कुआं है, उस कुएं में उतरने के लिए भी कम से कम 100 सीढ़ियाँ थी, स्टेयर्स, इतना गहरा था। तो वो क्या करते थे, कुएं से तो बावड़ी को भरते थे, बावड़ी जैसे तालाब होता है ना, पहले ऐसे ही होता था, वहीं पे लोग जाते थे, नहाते थे, खाते थे, हर गांव के साथ में कुएं बावड़ियां होते थे जहाँ से आदमी पीने का नहाने का पानी लेके आते थे, जाते कपड़े धो लेते थे, वाटर रेन वाटर स्टोरेज भी कर लेते थे। तो उन्होंने वो सुरंगें सारी, उनका एक जो मेन रास्ता था उसमें डाल रखा था। और वो क्या करते थे कि अगर कभी कोई इमरजेंसी हुई तो उन्होंने एक ऐसा डोर बना रखा था वाटरप्रूफ कि उसको खोल देते, खोलते क्या होता, सारी सुरंगें पानी से भर जाती। और उनका आज तक भी किसी को रहस्य नहीं मिल पाया कि भाई वो कहाँ होती। आज भी मानते हैं कि उसमें करोड़ों अरबों का गोल्ड ज्वेलरी सोना खजाना भरा हुआ है और कोई नहीं पहुंच पाया उसमें आज तक, कोई उससे जिंदा बाहर नहीं निकलता। तो ऐसा उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान करके बना रखी थी चीज़ें, और उनके पास तो पूरा मैप होता था और वो जाके निकल भी जाते थे। एक और भी बात होती थी, जैसे पगला खान था, उन्हें तो अपनी ताकत पे भरोसा था, बहुत बड़े बड़े भारी थे ना, और ये जो थे ज्ञानी चोर था, और वो बहुत ज़्यादा बड़ा पहलवान तगड़ा नहीं था लेकिन दिमाग तेज था, फुर्ती थी, शरीर छोटा था। और जब सुरंग होती है तो उसमें कौन काम आता है, जिसकी हाइट छोटी होगी है ना, वो तो आराम से रेंग के, जो पतला होगा जिसमें फुर्ती होगी है ना, आपके बड़ा स्ट्रांग होने से तो कोई फायदा नहीं होगा ना। ऐसे ही शिवाजी को क्या बोलते थे, पहाड़ी चूहा बोलते थे, शिवाजी का एक नाम पहाड़ी चूहा भी था, क्योंकि वो इतने छोटे थे और फुर्ती से तेजी से कहीं से भी निकल जाते थे, उन्हें पहाड़ों का जंगलों का पूरा पता था, कोई नहीं पकड़ पाता था, गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। तो उन्हें वो स्ट्रेटजी से, दिमाग से गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। ऐसे ही ज्ञानी चोर था। तब ज्ञानी चोर ने भी सुन लिया कि भाई पगला खान और 100 पठान लेके निकले हैं, ज्ञानी चोर तेरी मौत का फरमान, अब ज्ञानी चोर को मार के लौटेंगे। वो भी तैयार थे कि आ जा। अभी उस ज्ञानी, उसने देख लिया पगले खान ने कि हाँ ये हैं, उसने सोचा कि एक दिन रात को, जिस दिन ये फेस्टिवल होते हैं, जैसे शिवरात्रि थी, शिवरात्रि को ये सब लोग पूजा पाठ करेंगे भांग पी के और उस दिन नशे में होंगे, तो हम उस दिन इनके ऊपर अटैक करेंगे रात को। और क्योंकि सारे लोग एक जगह इकट्ठे होंगे, सारा गांव परिवार एक जगह इकट्ठा होगा, तो इकट्ठे ही मिल जाएंगे, हम इनके पूरे गांव को ही ख़त्म कर देंगे और ज्ञानी चोर को भी, और उस दिन ज्ञानी चोर जरूर आएगा भगवान शंकर के मंदिर में पूजा करने। तो सतर्क हमेशा ज्ञानी चोर भी रहता था, क्यों रहे। दोनों टीम ने अपनी अपनी फील्डिंग लगा रखी, बाहर पगला खान और 100 पठान घेरा बना के बैठे कि कब हम वो आए और एकदम चारों तरफ से घेर लेंगे। और ये भी सतर्क थे, उनने क्या कर रखा था कि जितनी सुरंगें थी ना, वो थी खूब ढोल ढमढमा बाजे बगाजे बजाए ये करे, और उन्होंने कुछ तो ऐसे कर दिए थे कि भी जो थे ना तबेले में, जैसे गायें भैंस होती थी, उनके जहाँ वो बनती थी उनकी पूंछ पे वो बांध दिए, जैसे होते ना ड्रम स्टिक होती हैं वो, उनके चारों तरफ डोल रख दिए। तो भैंस गाय क्या करेंगी, पूंछ लाएंगी तो क्या करेगा, ढोल बजेगा डम 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 डम। जितनी गाय भैंस थी भाई सारे सब के उन पे, और एक बार आवाज हुई तो फिर क्या हुआ, वो गाय भैंसे डरेंगी थोड़ी सी तो और जोर से करेंगी भागने की, इधर उधर करने की। तो जो जितनी जोर से लाए चारों तरफ डम डम डम, खूब डोल डम डमा हो रहा जबरदस्त तरीके से। और जब उन्होंने देखा कि हाँ बेबी, एक दो आदमी बैठा दिए बीच में जो थे, जैसे बेट डाल के, और वो भी चारों तरफ से सारे अपनी छतों पर बैठ गए चुपचाप, क्या होने दे पगले खान को। उन्होंने तो देखा कि हाँ आधी रात होगी, शंख मंख बजाए वहाँ, और बड़े से लाइट वाइट करी, और उन्होंने देखा कि अब सही मौका है। पगले खान ने तो आके और एकदम से हमला बोल दिया। अब हमला बोला जहाँ से सबसे ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, देखा वहाँ तो जाके कुछ नहीं, गायें बैल, और गायें बैल वैसे ही इतनी तेज ढोल के आवाज़ से पागल हो रखे थे। तो उन्होंने क्या कर रखा था, जो उनका बाड़ा था ना उसका एक रस्सी वो ले रखी थी, रस्सी से वो एकदम से सारे खोल दिए कि दिखा कि हाँ अभी आगे हैं। उन्होंने ऊपर ऐसे मचान बना रखी थी, देख लिया कि भाई इनकी अब आ रहा है, पगला खान आ रहा है, 100 पठान आ रहे हैं। जैसे ही वो आए गाँव में, घुसे चारों तरफ से, उन्होंने सारे गाय भैंसों को खोल दिए। तो आधे तो जितने थे वो पठान, वो गाय भैंसों के सिंगों से वैसे मारे गए, जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको उन्होंने ऊपर से भाले और वो मार मार के मार दिया, और पगला खान बचा, पगला खान के ऊपर डाल दिया जाल। पगला खान की एक बात खास थी, वो जिसको भी मारता था ना उसके कान काट लेता था चाकू से, और कान काट के उनकी माला बना के पहनता था, माला बना के गले में पहनता था। और उसके 100 हो गए थे, 100 महाकानों की माला उसने पहन रखी थी। तो ये मतलब आतंक का वो था उसका, कि इतना अपने आप को पावरफुल दिखाने का और आतंक साबित करने का काम करना था। अब उन्होंने पकड़ लिया पगला खान, पगला खान पकड़ के ज्ञानी चोर ने क्या करा, उसके कान काट लिए एक बार, और उसके गले में जो माला थी वो माला उतार के उसमें एक और पिरो दिया। तब क्या हो गया, 101 कानों की माला होगी, और कान काट के पगला खान को घायल करके अंधा करके और भेज दिया वापस, और उसके साथ में एक चिट्ठी भेज दी, और उसको ऐसा स्लो पॉइजन दे दिया कि वो सुल्तान के पास जाते जाते धीरे धीरे मर जाए। उसमें क्या लिखा, सुल्तान ने तो लिखा था कि भी पगला खान और 100 पठान लेके निकले हैं ज्ञानी तेरी मौत का फरमान। उस ज्ञानी चोर ने लिख कर वापिस भेज दिया कि भी पगला खान और 100 पठान कटवा बैठे हैं कान, हिम्मत हो तो आन मिलो सुल्तान। कि भी सुल्तान तेरे पगला खान के तो मैंने कान काट लिए, तेरे 100 पठान मारे गए, रब्बी तेरे में हिम्मत है, अभी तू अगर हमारे को चैलेंज करना चाहता है तो खुद से आके मिल, खुद से आके लड़, ऐसे गुलामों को भेज के नहीं। तो उसने चैलेंज भेज दिया वापस पगला खान के हाथे कि पगला खान और 100 पठान कटा बैठे हैं कान, अरे हिम्मत हो तो आन मिलो सुल्तान, ये मैसेज पहुंचा दिया। तो ये थी पगले खान और 100 पठानों की कहानी ज्ञानी चोर की। अगली कहानी में देखते हैं कि बादल शाह क्या करेगा, खुद आएगा लड़ने पकड़ने ज्ञानी चोर को, या फिर किसी और को भेजेगा। खुद आएगा तो क्या होगा, किसी और को भेजेगा तो क्या होगा, और कैसे ज्ञानी चोर की बावड़ी सुरंगें वो प्लानिंग थी वो काम आएंगी। ठीक, ये हम सुनेंगे ज्ञानी चोर के अगले किस्से में। गुड नाइट।